श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी प्रभु गण की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। नीलाचल पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंद और ग्लोरी श्री असेंबल डिवोटीज और ग्लोरी श्री असेंबल डिवोटीज और ग्लोरी श्री असेंबल डिवोटीज और ग्लोरी श्री श्री गुरु एंड गौरांग श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। आज हम स्कंद चार के 24वें अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में चर्चा करेंगे। कृपया मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरेक्षाय अदिशा प्राचीन हरे ठीक है तो फिर मैं दूसरा बोलता हूँ और फिर तीसरा रिपीट करेगा। हरेक्षायादिशत् प्राचीन धूमकेशाया दक्षिणां प्रतीचिं वृक्षसंज्ञाया तुर्यां द्रविण से विभु। तीसरा श्लोक। अंतर्धान गतिं शक्रात् लब्ध्वान्तर्धान संगितः अपत्यत्रयमाधत्ता शिखंडिन्यां सुसम्मतम्। बोलो। अंतर्ध्यान गतिं शक्रात् लब्ध्वान्तर्धान संगितः थोड़ा जटिल है आज प्रयास कीजिए। अंतर्धान गति शक्र लब्धान्तर्धान संगीत लब्धान्तर्धान संगीत अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां अंतर्धान गतिं शक्रात् हरे कृष्ण। तो यहाँ दूसरे श्लोक का अनुवाद भी हम पढ़ लेते हैं। महाराज विजयदास्य ने संसार का पूर्वी भाग अपने भाई हरेक्ष को, दक्षिणी भाग धूम्रकेश को, पश्चिमी भाग वृक को तथा उत्तरी भाग द्रविण को प्रदान किया। उसके बाद इसे श्लोक में बताएगी। महाराज पृथ्वी के पुत्र विजयदास्य को इंद्र से वरदान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ विचार प्रकट किए हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण ये सेंटेंस आया कि हाँ, इससे जब इंद्रदेव ने घोड़ा चुरा लिया पृथु महाराज का, तो केवल विजयदास्य नहीं उन्हें देखा था और कोई उन्हें देख नहीं पा रहा है, क्योंकि जब असंतर ध्यान होने की शक्ति थी तो उस समय केवल पृथु महाराज के पुत्र विजयदास्य ने ही इंद्र को देखा घोड़ा ले जाते हुए, लेकिन उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा, देखते हुए भी क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, क्योंकि विजयदास्य महाराज विजयदास्य सही व्यक्तियों का सम्मान करते थे और वे जानते थे कि इंद्र वास्तव में ठीक है घोड़ा चुरा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, लेकिन वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इंद्र कौन है? इंद्र एक तो देवताओं के राजा है और उस पर वो भगवान के सेवक है, भगवान के भक्त ही है। इंद्रदेव भी भगवान के भक्त है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विचार यहाँ पे प्रकट किया है प्रभुपाद जी ने। तो हम यहाँ पे ये जो भगवत ज्ञान सुनने का प्रयास कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें जानना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है भगवान का भक्त बनना। तो भक्त बनने के लिए हमको जो भक्त के लक्षण है वो अपने अंदर विकसित करने पड़ेंगे। बताया है कि यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचन सर्वे गुणैः सत्र समासते सुतः, कि जिसके पास भगवान की भक्ति है तो उसमें देवताओं के सभी गुण विद्यमान होते हैं। हराव भक्तस्य कुतो महात्मना, लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है, जो कृष्ण का भक्त नहीं है, उसमें अच्छे गुण कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो वास्तव में जो भक्त हैं उनमें ही वास्तविक सद्गुण पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम देख सकते हैं कि भक्त भी गलती करते हैं कुछ। तो क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें उसको किस प्रकार लेना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे भक्ति जीवन के लिए। और हमारे आचार्य अपने वैष्णव गीत लिख कर सिखा रहे हैं कि किस प्रकार का मनोभाव हमें विकसित करना है जिससे हम भक्ति प्राप्त कर सकें, भगवान के प्रति प्रेम भाव जागृत कर सकें, भगवान के प्रिय बन सकें। भगवद गीता में भी भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार का भक्त मुझे प्रिय है, जो ना द्वेष्टि न कांक्षति, जो ना किसी से द्वेष करता है, बहुत सारे लक्षण भगवान बता रहे हैं एक अध्याय में। इससे पता चलता है कि ये सब लक्षण हमें अपने अंदर विकसित करने पड़ेंगे, तभी हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर सके, भगवान की कृपा को हम आकर्षित कर सकते हैं, केवल तभी। और हमारे आचार्य बता रहे हैं कि एक वैष्णव भजन में कि सकले सम्मान करित शक्ति देहोनाथ यथा यथा, हम प्रार्थना कर रहे हैं वैष्णव आचार्यों से, गुरुजनों से, कि कृपया आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं सबका सम्मान कर सकूं, यथा जो जिस सम्मान के योग्य है उसको मैं यथोचित सम्मान प्रदान कर सकूं, ये शक्ति आप हमें प्रदान कीजिए। क्योंकि हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है। हमारे अंदर क्या शक्ति है? हमारे अंदर दूसरों का दोष देखने की शक्ति है, हमारे अंदर दूसरों की निंदा करने की शक्ति भरी हुई है, उसमें हमारा मन बहुत दक्ष है। हमेशा हमारा मन हमें इस दिशा में लेके जाता है, इस तरह हम दूसरे की कोई थोड़ी सी भी भूल है उसको हम बड़ा करके देखने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अनर्थ है हमारे अंदर। तो अगर हम वास्तव में भक्त बनना चाहते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये जो अनर्थ है हमारे, किस प्रकार हम इन्हें दूर कर सके। अनर्थ हैं लेकिन हमें इन्हें दूर करना है, तो वो हम वैष्णवी कृपा से, उनके मार्गदर्शन से, विनम्र भाव से सेवा करके वो हम कर सकते हैं। वो प्रयास हमको निरंतर जारी रखना है। अगर हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति करने आए हैं, तो हमें हमेशा प्रयास करना है अपने आप को सुधारने का। तो जैसे एक संवाद आता है श्रीमद् भागवत में भी, गरुड़ जी का और शौबरी मुनि का। शौबरी मुनि बहुत तपस्या करते थे, बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। वो यही यमुना जी के अंदर रहकर पानी में वो बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे कि मेरी तपस्या में कोई विघ्न ना डाल दे, इसलिए एकांत स्थान में पानी के अंदर जाके तपस्या कर रहे थे। तो क्या समस्या उत्पन्न हो गई उनके साथ? उन्होंने क्या किया? उन्होंने वैष्णव अपराध किया। किनके प्रति किया? गरुड़ जी के प्रति। गरुड़ जी अपना, गरुड़ जी एक श्रेणी के जीव हैं, लेकिन वो भगवान के परम श्रेष्ठ भक्त है। तो ये जानना चाहिए था उनको, शौबरी मुनि को, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये भगवान के परम भक्त हैं, परम वैष्णव है, भगवान विष्णु के वाहन है। लेकिन ये इस बात पर विचार न करते हुए कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी अवस्था क्या है, केवल शौबरी मुनि ने दोष दर्शन किया। अरे मछलियों को मार रहे हैं तो ये जीव हत्या हो रही है, जीवों के प्रति कष्ट दिया जा रहा है, तो ये सोच के उन्होंने गरुड़ जी को प्रति अपराध कर दिया। तो उसका परिणाम हम जानते ही हैं क्या हुआ, कि इतने वर्षों की जो तपस्या वो कर रहे थे शौबरी मुनि, वो सब नष्ट हो गई। केवल उन्होंने जल में मछलियों को आपसी संग करते हुए देखा और उनका मन विचलित हो गया योग से, तपस्या से, तो वो फिर संसारिक जीवन में चले गए। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए, हमें दूसरे भक्तों के दोष नहीं देखने चाहिए और कभी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये शास्त्र में बताया गया पाप है। अगर हम दूसरों की निंदा करते हैं ये बहुत बड़ा पाप है। हम सोचते हैं कि हम भक्त बन गए, हम तो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, हम सुबह जल्दी उठते हैं, हम कितनी तपस्या कर रहे हैं, इस बात का भी हमको अहंकार आ जाता है। माया इस प्रकार से हमें भ्रमित करती है कि हम भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसका भी हमें अहंकार आ जाता है, मैं कितनी तपस्या कर रहा हूँ, मैं कितना महान भक्त बन गया। तो ये माया हमें इस तरह से पकड़ लेती है अलग अलग प्रकार से। तो वास्तव में ये भक्ति में बाधा है। हमें आचार्य हमें क्या सिखा रहे हैं हमें वो जानना चाहिए। तो हम यहाँ पे भक्त बनने आए, और वैष्णव, वैष्णव अर्थात सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। तो प्रभुपाद जी से पहले किसी ने पूछा, जब प्रभुपाद विदेश में प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी से एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि ये सब लड़के लड़कियां हैं, इनको आप क्या बनाना चाहते हैं, आप इन सबको अपने शिष्य बना रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं इन्हें ब्राह्मण बनाना चाहता हूं, लेकिन इसका ये एक अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी को केवल ब्राह्मण बनाना चाहते हैं, हमको केवल ब्राह्मण बनाना। ब्राह्मण जो है वो वैष्णव से नीचे की स्थिति है। ब्राह्मण यानी जो शुद्धता के जो गुण है, शास्त्र के जो नियम है उसके अनुसार चलेंगे। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं ब्राह्मण के क्या लक्षण है, कोई बता सकते हैं ब्राह्मण के लक्षण? भगवान क्या बता रहे हैं गीता में? शमो दमो तपोशोचम, बोलिए, शमो दमो तपोशोचम शांति राज्यो में वचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो भगवान ये गुण बता रहे हैं ब्राह्मण के। तो ये जो गुण है ये हमें अपने अंदर विकसित करने पड़ेंगे सबसे पहले, लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है वैष्णव बनना, भगवान का भक्त बनना, तो वो हमारा लक्ष्य है। तो बहुत वो लक्ष्य जो है वो बहुत उच्च है, लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले तो प्राइमरी क्लास में जाते हैं, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई शुरू करता है, अध्ययन शुरू करता है, तो सबसे पहले उसकी एडमिशन क्या होती है? मैट्रिक क्लास में नहीं होती है, प्राइमरी क्लास में होती है, नर्सरी में जाता है। लेकिन वो नर्सरी में एडमिशन ले लिया है, लेकिन उसको कहाँ तक जाना है, उसको उसका लक्ष्य होना चाहिए पीएचडी तक। एक दिन उसको पीएचडी क्लियर करनी पड़ेगी, तभी वो योग्य बन सकता है। तो हम लोग भक्ति करने के लिए आए हैं,
तो अभी हमारी भक्ति का प्रारंभ है, अभी हम प्राइमरी स्टेज में हो सकते हैं, लेकिन एक दिन तो पीएचडी लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। पीएचडी लेवल मतलब शुद्ध भक्त, तो शुद्ध भक्त तो बनना ही पड़ेगा। भगवत धाम जाना है तो भगवान के जो गुण है वो भक्तों में वो गुण पाए जाते हैं, वो गुण हमें अपने अंदर विकसित करने ही पड़ेंगे। जब तक वो गुण हम अपने अंदर विकसित नहीं कर पाएंगे तब तक हम इस संसार में रहेंगे और अभ्यास करते रहेंगे, वो हमको जारी रखना है। लेकिन हमें अपना लक्ष्य याद रखना है और उस लक्ष्य को स्मरण करते हुए हमें गंभीर रहना है हमेशा इसके लिए। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो भक्ति जीवन में कार्य है वो ये है कि हम किसी की निंदा ना करें और दूसरे किसी के दोष ना देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बार बार आचार्य हमें ये याद दिला रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो देखना हमारा अधिकार नहीं है। वो अधिकार जो है, वो जो अधिकारी है उनका अधिकार है, गुरुजन है उनका अधिकार है, या जिनको सेवाओं का दायित्व दिया गया है उनका अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। तो हमें अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए हमेशा, ये महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि अगर हम दूसरों को देखना चाहते हैं कि कौन किस स्तर पर है, कौन कितना शुद्ध है या नहीं है, उसके लिए पहले हम अपने आप को शुद्ध बनाएं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पहले तुम अपने आप को शुद्ध बनाओ, तब तुम ये देख पाओगे कौन कितना शुद्ध है या नहीं है। इसका निर्णय तुम अभी से मत करो, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सब कुछ वास्तव पहले हमसे प्रारंभ होता है, सबसे पहले अपने आप से प्रारंभ करो। अगर आप खुद अच्छा भक्त बनने का प्रयास करेंगे तभी आप दूसरों के बारे में समझ सकते हैं कि कौन किस स्तर पर है, अन्यथा हमें ये नहीं देखेंगे, ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि ये अच्छा भक्त है ये बुरा भक्त है, ये बहुत प्रगति किया ये प्रगति नहीं किया, ये हम नहीं अनुमान लगा सकते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छा कि हम खुद अच्छा भक्त बनने का प्रयास करें, और अगर कोई भक्त हमारे प्रति दुर्व्यवहार भी करते हैं किसी कारण से किसी परिस्थिति में, तो ऐसी स्थिति में हमें ये समझना चाहिए कि अवश्य कुछ मेरी ही गलती होगी और हम खुद अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। भगवान दूसरे भक्त के माध्यम से मुझे मेरी गलती का अनुभव करवा रहे हैं, तो मुझे अभी अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार का मनोभाव हमारे आचार्य हमें सिखा रहे हैं। अगर हम इस प्रकार से कार्य करेंगे भक्ति जीवन में, भक्तों के समाज में, तो हम जरूर प्रगति कर सकते हैं। तो एक बार एक भक्त श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के पास गए और वो एक दूसरे भक्त की बहुत निंदा करने लगे कि ये भक्त ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसे ये गलती करता है, ये वो गलती करता है, ऐसे वो बहुत समय तक बोलते रहे। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी सुन रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे और एकदम शांत है। तो कुछ समय बाद जब वो भक्त बोल चुका काफी, तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उनसे बोले कि आप मुझे ये सब बात बता रहे हैं कि उनमें ये सब दोष हैं, इतने दोष हैं, लेकिन क्या उसमें कोई अच्छी क्वालिटी है, कुछ अच्छा गुण भी है उस भक्त में? तो वो भक्त शांत हो गया, कुछ बोला नहीं, बोल नहीं रहे। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोलते हैं कि आपके भले के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में भक्त बनना चाहते हैं तो आप कृपया उनकी जो छोटी सी भी अच्छाई है उसे देखिए और उनके दोष मत देखिए। तो ये आचार्य हमें सिखा रहे हैं कि अगर हम वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं, भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, भक्त के गुण विकसित करना चाहते हैं, तो हमें केवल दूसरों की अच्छाई देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर खुद कितनी कमियां हैं। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ये बोलते हैं कि अच्छा होगा कि आप अपनी कमियां देखें और उनको सुधारने का प्रयास करें। तो हम अगर विचार करें एकांत में तो हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है। इसके लिए विनम्रता चाहिए, इसलिए ज्ञान का प्रारंभ है विनम्रता। प्रभुपाद जी बता रहे हैं अमानित्वम, अमानित्व मतलब विनम्रता। सबसे पहले हमें खुद विनम्र बनने का प्रयास करना चाहिए। तो जो व्यक्ति विनम्र है वो अपनी कमी जरूर देखेगा और किस प्रकार उसको सुधार कर सके इसका प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हाँ मेरे अंदर ये बुराई है वो बुराई है ये हम सोच के केवल निराश हो जाए, नहीं, हमें उन बुराइयों से मुक्त होने का प्रयास करना है साधु संघ से, भक्तों की सेवा से और वैष्णव गुरु के अनुगत्य से। तो ये निरंतर प्रयास हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भक्त की निंदा करते हैं तो उससे भगवान को दुख पहुंचता है। ये हमारे आचार्य बताते हैं कि डोंट क्रिटिसाइज एनीवन, इट हर्ट्स कृष्णा. भगवान के हृदय को कष्ट पहुंचता है अगर हम किसी दूसरे की निंदा करते हैं, किसी विशेष रूप से जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भगवान का नाम जप करने का प्रयास कर रहे हैं. क्योंकि हम देख सकते हैं कि संसार में कितने अनंत जीव हैं जो भटक रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता जीवन का लक्ष्य क्या है. लेकिन कोई भाग्यवान जीव अगर ये समझ पा रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए और वो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा यज्ञ है. कलयुग का युग धर्म है जिसका अगर कोई व्यक्ति पालन करने का प्रयास कर रहा है तो किसी भी प्रकार से उसे हमें हतोत्साहित नहीं होने देना चाहिए. इसलिए प्रभुपाद जी ये बोले हैं, प्रभुपाद जी बोले हैं कि मेरा भाव ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो कृष्ण के शरण में आ रहा है तो उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाने देना चाहिए. चाहे वो कुछ भी गलती करे, उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए सुधरने का. ये प्रभुपाद जी का भाव है. प्रभुपाद जी जो वैष्णव है, वो वैष्णव परम दयालु है. वो जानते हैं कि सभी जीव भगवान को भूलकर इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं और उनका एक ही मात्र लक्ष्य है किस प्रकार से इनका कृष्ण से संबंध जोड़ा जाए, किस प्रकार इनको मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊं. यही शुद्ध वैष्णव का भाव है. तो वो चाहते हैं कि किसी कारण से भी अगर कोई जीव कृष्ण की शरण में आया तो वापिस नहीं जाना चाहिए. तो हमें अपना आचरण व्यवहार इस प्रकार करना चाहिए कि हमारे कारण से किसी दूसरे भक्त को कष्ट ना पहुंचे, ऐसी उसको चोट ना पहुंचे जिससे वो भक्ति करने से हतोत्साहित हो जाए. ये बहुत प्रयास करना चाहिए. वैष्णव है बहुत संवेदनशील होना चाहिए, दूसरों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होना चाहिए. ये भावना देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं. जैसे हम वृंदावन धाम में हैं तो वृंदावन धाम में उनको बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहना चाहिए. इवन ये बताया है कि जो यहाँ के दूसरे जीव भी हैं, बंदर हैं या चींटी हैं, जो सब जीव हैं वो सब भी भगवान के भक्ति ही हैं. क्यों? क्योंकि वो वृंदावन धाम में रह रहे हैं. लेकिन कुछ गलती किए हैं, कुछ पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किए हैं जिस कारण से उन्हें दंड रूप में इस प्रकार का शरीर प्राप्त हो गया है. लेकिन फिर भी वो भगवान के भक्त हैं. तो हमें गलती से भी चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए. अगर हम एक चींटी को भी कष्ट नहीं देंगे तो भगवान हमसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे. हमको कुछ ज्यादा कुछ बड़ा करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है भगवान को. भगवान को हमारी सेवा की जरूरत नहीं है. भगवान को हमारे सही मनोस्थिति, प्रॉपर एटीट्यूड की आवश्यकता है. भगवान चाहते हैं कि हम वास्तविक भक्त के लक्षण विकसित करें, तब हम वास्तव में भगवान की सेवा कर पाएंगे. कि हम सेवा कर रहे हैं लेकिन क्या वो सेवा भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, गुरु हमारी वो सेवा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, ये प्रश्न है. तो इस प्रश्न का उत्तर हमें पूछना चाहिए अपने आप से, ये प्रयास करना चाहिए. और भगवान बहुत उदार है, इसलिए भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि. भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि चाहे कोई बुरे से बुरा दुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए. तो एक बार प्रभुपाद जी इसी श्लोक पे व्याख्या कर रहे थे एक प्रवचन में, तो एक माता जी भक्त उठ के प्रभुपाद जी से प्रश्न की. तो वो प्रश्न की कि प्रभुपाद जी अगर कोई व्यक्ति है वो ब्राह्मण के स्तर पर आ जाता है, अर्थात हमारी संस्था में उसको ब्राह्मण दीक्षा मिल जाती है, तो ब्राह्मण के कार्य कर रहा है, लेकिन वो किसी कारण से वो चला जाता है, वो सब कुछ छोड़ देता है, सब अभ्यास करना साधना का, और फिर कुछ समय बाद फिर वो वापस आ जाता है, तो हमें क्या मानना चाहिए उसको, क्या हमें उसे शूद्र मानना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ये सुन के बहुत क्रोधित होते हैं. प्रभुपाद बोलते हैं कि हु आर यू टू जज, तुम कौन हो ऐसा निर्णय लेने वाले, आप किसी के बारे में कैसे निर्णय ले सकते हैं, ये गुरु का कार्य है. गुरु देखेंगे किसको क्या करना है, किस प्रकार से किसका भला हो सकता है. तो जैसे हमारे माता पिता हैं, वो जानते हैं कि बच्चे का किसमें भला होगा और किस प्रकार से उसे दंड देके या प्रेम से समझा कर उसे सुधारा जा सकता है. तो हमारी जो भी कमी है, किसी की भी कोई कमी है किसी भक्त की, उसे सुधारने का दायित्व तो हमारा नहीं है, उसे सुधारने का दायित्व तो गुरु का है, उसे सुधारने का दायित्व तो भक्तों उच्चतर उच्च भक्तों का है जिनको सेवा का अधिकार प्राप्त मिला हुआ है. तो हमें उन पर छोड़ देना चाहिए, हमें दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए. तो ऐसे एक कहानी है, प्रभुपाद जी बताते हैं. एक बार एक राजा थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट. तो वो राजा कि राज महल में एक बार एक चोर को पकड़ के लाया जाता है। तो वो चोर को जब पकड़ के राजा के सामने लेके जाते हैं तो वो राजा पूछते हैं कि इससे इसको क्या सजा दी जाए। लेकिन चोर बोलता है कि आप मुझे कुछ भी सजा दीजिए, लेकिन उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तो राजा थोड़ा हैरान रहते हैं, लेकिन बोलते ठीक है आप पूछिए क्या प्रश्न है। तो वो चोर पूछता है कि आप में और मुझ में क्या अंतर है। तो राजा बहुत हैरान हो जाता है, अरे ये कैसा प्रश्न है। तो वो बोलता है कि आप में और मुझ में क्या अंतर है, आप बड़े चोर है मैं छोटा चोर हूँ, मैं छोटी मोटी चोरी करता हूँ आप बड़े बड़े राज लूटते हो, तो हमारे अंदर आपके अंदर फर्क क्या है, आप भी चोर है मैं भी चोर हूँ। तो अलेक्जेंडर राजा सोचता है बात तो सही कर रहा है, तो राजा उसको छोड़ देता है। उसी तरह से जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण भी कभी कभी चाहते हैं कि भक्त जो है उनको कुछ कुछ डांटे हैं, कुछ उनके प्रति कुछ इस प्रकार की शरारत करें, तो भगवान भी ऐसे कभी चाहते हैं, इसलिए भगवान अपने भक्तों के साथ अलग लीलाएं करते हैं। और प्रभुपाद जी एक स्टोरी एक कहानी कुछ कुछ सुनाया करते थे, एक बंगाल में एक चरित्र है, पात्र है, हास्य पात्र, उसका नाम है गोपाल भाड़। तो प्रभुपाद जी उसकी स्टोरी सुनाते थे, वो एक राजा थे कृष्णचंद्र, उनके राजमहल में एक 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 वो हास्य पात्र थे। कभी कभी राजा लोग, क्योंकि राजा हमेशा गंभीर कार्य कर रहे हैं, राज्य का अधिकार शासन का कार्य कर रहे हैं, तो वो बहुत बहुत हमेशा उनको गंभीर रहना पड़ता है, लेकिन हर समय गंभीर रहना भी अच्छा नहीं होता, कभी कभी थोड़ा लाइट मूड होना चाहिए, कभी थोड़ा मजाक हंसी मजाक होना चाहिए। तो राजा कृष्णचंद्र एक एक अपने राज्य में एक गोपाल भाड़ नाम के एक हास्य पात्र को रखे थे। तो एक बार वो राजा उनसे पूछते हैं, गोपाल तुम्हें और गधे में क्या अंतर है। तो गोपाल भाड़ बोलता है केवल 5 कदम का अंतर है महाराज, वो 5 कदम तक खड़ा था राजा से। तो राजा बहुत हंसने लग जाते हैं, मजाक कर रहे हैं हल्का, और राजा उसे बुरा नहीं मानते, गुस्सा नहीं मानते। तो अगर हम प्रेम भाव से किसी से कुछ मजाक करते हैं, किसी भक्त से, तो वो अलग बात है, ऐसा नहीं कि हमें हमेशा गंभीर रहना है और कुछ मजाक नहीं कर सकते। आपस में अगर प्रेम मैत्री है तो हमें हंसी मजाक करना चाहिए, लेकिन वो हंसी मजाक इस भाव से नहीं होना चाहिए कि हम किसी को कष्ट दें, दुख दें। हमेशा हमारा प्रयास करना चाहिए कि हमारे किसी भी कारण से, किसी बात से, किसी कार्य से किसी दूसरे भक्त को कष्ट ना पहुंचे। तो ये अगर हम सावधान रहते हैं इसमें, तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, ये हमें प्रयास करना चाहिए। तो भगवान भी हमेशा गंभीर नहीं रहना चाहते, भगवान अपने भक्तों के साथ आमोद प्रमोद करते हैं, लीलाएं करते हैं। इसे ये देखकर तो ब्रह्मा जी विचलित हो गए, जब भगवान अपने ग्वाल सखाओं के साथ खा रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके उनके मुख से निकाल के अपने मुख में डाल रहे हैं, अपने हाथ से उनके हाथ में उनके मुंह में प्रसाद डाल रहे हैं, खिला रहे हैं उनको प्रेम से। तो वो देख के ब्रह्मा जी विचलित हो गए, ये कैसे भगवान है, ये तो ब्राह्मण का लक्षण नहीं पालन कर रहे हैं, ब्राह्मण शुद्धता का आचरण करता है, किसी का झूठा नहीं खाता, ये तो दूसरे का झूठा खा रहा है, ग्वाल बालों का झूठा खा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मा जी विचलित हो गए। तो ऐसे बताया कि भगवान की लीलाओं को हम नहीं समझ सकते, उसी प्रकार भगवान के भक्त जो कार्य करते हैं उसको भी हम नहीं समझ सकते। वैष्णवे क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझाए, देवी देवता भी भ्रमित हो जाते हैं वैष्णव क्या कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि दूसरे भक्त जो है वो वास्तव में वैष्णव है, और मैं ही एकमात्र भक्त नहीं हूँ, मैं ही केवल भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, सीखना प्रारंभ कर रहा हूँ। तो ये सोचते हुए हमें दूसरे भक्तों के दोष नहीं देखने चाहिए, और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरे की निंदा करने से सारी भक्ति नष्ट हो जाती है। जो हम भक्ति कर रहे हैं, जितनी हम तपस्या कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, वो सब उस सबका फल जो है वो नष्ट हो जाता है, और भक्ति नहीं प्राप्त होगी, भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। हाँ ठीक है, हमें कुछ भौतिक सुख प्राप्त हो सकता है, धन संपत्ति प्राप्त हो सकता है, और भौतिक सुख सुविधा प्राप्त हो सकती है जो भी हम तपस्या कर रहे हैं सर भक्ति में भी, लेकिन वो एक कर्मकांड जैसे हो जाएगा फिर। तो भक्ति का उद्देश्य क्या है, चैतन्य महाप्रभु को ये सब सिखाने के लिए नहीं आए कि हम किस प्रकार से अब पुण्य कर्म करें। हमारा पुण्य कर्म दूसरे प्रकार का है, हमारा पुण्य का उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं हमको, वैराग्य विद्या। भक्ति क्या है, भक्ति योग क्या है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, चैतन्य महाप्रभु को ये सिखाने के लिए आए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवद गीता में योग के बारे में, जब योग के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है भगवान से जुड़ना, भगवान से मिलना, ये उद्देश्य है योग का। तो एक श्लोक है भगवान जिसमें बता रहे कि सन्यास, जिसको सन्यास कहा जाता है वो वही योग है, सन्यास ही योग है। योग अर्थात योग का अगर हम पालन करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमको सन्यास के नियम का पालन करना पड़ेगा। सन्यास का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि घर बार छोड़ देना, वो नहीं है, लेकिन वैराग्य है, यानी जो पाप कार्य हैं उनका त्याग करना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण है, ये हमें जानना चाहिए। अगर हम वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं तो हमें पाप कार्य छोड़ना पड़ेगा, तो ये जानना जरूरी है। तो ये दूसरों की निंदा करना, दूसरों के दोष देखना, ये पाप है। हम सोच सकते हैं कि नहीं, मैं तो कुछ पाप नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चार नियम का कठोरता से पालन कर रहा हूँ, लेकिन अनजाने में हम लोग कुछ पाप कर रहे हैं। शास्त्र के अनुसार जो पाप है, दूसरे की निंदा करना, दूसरे का दोष देखना, विशेष रूप से जो भक्त हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमें जानना चाहिए आचार्य हमें क्या बता रहे हैं। इसलिए बताया कृष्णेति यस्य गिरिधाम मनसा गृह्यते, रूप गोस्वामी बता रहे हैं उपदेशामृत। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो उपदेशामृत है ये हर ब्रह्मचारी सन्यासी के साथ रहनी चाहिए हर समय, ये पुस्तक हमेशा, मतलब इसका अर्थ ये कि हमें इसको गंभीरता से पढ़ना चाहिए, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, इसको डाइजेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद बहुत कठोरता से बोलते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर की पुस्तकें मत पढ़ो, मतलब अर्थ ये है कि सबसे पहले तुम, मैं जो पुस्तकें लिखा उसको पढ़ो, उसको पढ़ने में ही तुमको पूरा जीवन लग जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर एक सिद्धि के अनुसार, समय के अनुसार कुछ लिखे हैं, लेकिन वर्तमान में जो हमारी सिद्धि के अनुसार प्रभुपाद जी हमको प्रस्तुत कर रहे हैं सबसे व्यवहारिक रूप में किस प्रकार हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रभुपाद की शिक्षाओं को ठीक से ना समझ के अगर कोई बहुत बड़ा बड़े बड़े ग्रंथ, वैष्णव आचार्य के ग्रंथ पढ़ने की इच्छा रखेंगे या दूसरी दूसरी जगह चले जाएंगे, राधा कुंड जाएंगे या किसी दूसरी जगह जाएंगे, सोचेंगे हम भजन कर लेंगे, भजन में उन्नत हो जाएंगे, तो वास्तव में अपने आप को बहुत बड़ा ये धोखा देने वाला कार्य है। क्योंकि प्रभुपाद इस प्रकार से हमें ये ज्ञान दे रहे हैं जिसे हम व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में अपना सके, इतना तो करना संभव हो नहीं पाता है, और हम किस प्रकार ऊंचा चले जाएंगे। जैसे बताया कि प्राइमरी एजुकेशन में पहले एडमिशन लेंगे तब तो एक दिन PhD में पहुंचेंगे, लेकिन बहुत अधीर होके अरे मैं ABC नहीं सीखूंगा और डायरेक्ट मुझे मैथमेटिक्स सीखना है, वो संभव नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। इसलिए आचार्य जानते हैं किस प्रकार से हमें मार्गदर्शन देना है, तो हमें आचार्य का अनुगत करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ऐसे आचार्य हैं जिन पर विशेष कृपा है चैतन्य महाप्रभु की और परंपरा की। प्रभुपाद जी हमको बहुत व्यवहारिक ढंग से ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति का ज्ञान, इसलिए हमको प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए गंभीरता से, और ऐसा करने से हम प्रभुपाद जी की संगति कर रहे हैं। जैसा हम संगति करेंगे हमारा मनोभाव वैसा विकसित हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना, प्रभुपाद जी के लेक्चर प्रवचन सुनना, ये हमें इसमें निष्ठा रखनी चाहिए। अगर हम इधर उधर की सुनेंगे, ये महात्मा वो महात्मा, तो मिक्स हो जाएगा सब, प्रभुपाद जी के भाव पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें गंभीरता से प्रभुपाद जी के प्रति एक निष्ठ होना चाहिए, गुरु निष्ठा आवश्यक है हमारे लिए, ये महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त हो सकते हैं सब जगह, ऐसा नहीं है कि खाली शुद्ध भक्त यहीं पे है, बहुत भी जगह शुद्ध भक्त हो सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रभुपाद जी के प्रति कमिटेड है, ये हमें समझना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, ये हमारी मर्यादा है। और जैसे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनसे कुछ गलती हो भी जाती है तो फिर भी उन्हें साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं, अभिचे शुद्राचार श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये इतनी शक्तिशाली है क्योंकि हम तीन गुणों के मध्य में रह के कार्य कर रहे हैं, तो कभी भी गुणों के प्रभाव से कुछ गलती हो सकती है, ये संभव है, ये कोई असंभव कार्य नहीं है। जन्म जन्मांतर से हम ये गुणों के प्रभाव में ही कार्य करते आ रहे हैं, अभी भी हम तीन गुणों में बंधे हुए हैं, तो कुछ भी कभी कुछ गलत कार्य हो सकता है किसी भक्त से भी, लेकिन उसे नजरअंदाज करना चाहिए। केवल एकमात्र उपाय प्रभुपाद जी बताया कि नजरअंदाज करना चाहिए, ओवरलुक प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये नहीं बोले कि उसको दंड देना चाहिए या उसको निकाल देना चाहिए, नहीं, उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ये निष्कर्ष प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। क्योंकि अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं भगवद गीता में कि अतः केन प्रयुक्त पापम चरित पुरुष अनिच्छन अपनी कौन वार्षण बलादिव नियोजित, अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि अगर कोई पाप ना करना चाहे फिर भी वो क्यों पाप कार्य कर लेता है, अनिच्छन अभी ना चाहते हुए भी बलाद ही नियोजिता, ऐसा लगता है कि जिसको जबरदस्ती उस पाप कार्य में नियोजित किया जा रहा है ना चाहते हुए। उसका उत्तर भगवान देते हैं कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशिनो महापापा विद्यानम यह वैरिणा। तो भगवान बोले कि रजोगुण से उत्पन्न जो काम है, काम भावना है, वो जो बाद में क्रोध का रूप ले लेती है, वो इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। महाशिनो महापापा, वो सारे जो हमारे सद्गुण है उसको ग्रास कर लेती है। ये जो रजोगुण से उत्पन्न जो काम भाव है, क्रोध भाव है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी हमें ये उपाय बता रहे हैं। इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है कि कम से कम इसलिए हमको सतोगुण में स्थिर होना पड़ेगा। तो ब्राह्मण के लक्षण जो बताएं वो विकसित करने का प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी हमको ऐसा प्रोग्राम दे दिए कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही होगा। आजकल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना कठिन है कि हम अनुभव कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो उठना ही पड़ेगा, स्नान करना ही पड़ेगा, भगवान के दर्शन करने मंगल आरती आना ही पड़ेगा। ये निश्चित रूप से करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करेंगे, थोड़ी सी तपस्या हम करेंगे, तो हम सतोगुण विकसित कर सकते हैं धीरे धीरे। और सतोगुण में ही, सतोगुण का अर्थ है प्रकाश। तब क्या कार्य करना है, कैसे करना है, हम समझ पाएंगे, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे क्या कैसे करना है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो कोई गलती करता है अगर भक्त, तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, शिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रति जानी हमें भक्ता प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं कि जल्दी ही वो भक्त जो है महात्मा बन जाएगा। अर्थात जितनी भी उसकी कमियां हैं, दोष हैं, प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में जो भी हम कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत कार्य करता भी है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो उस कार्य से मुक्त हो जाएगा। और भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, एक कुंती पुत्र तुम एक घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो अगर कोई भक्त कुछ गलती करता है, तो उस गलती को सुधारने का दायित्व तो भगवान खुद अपने हाथ में ले रहे हैं। भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो अगर कोई भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान की शरण में आया, तो किस प्रकार से उस जीव का कल्याण कर रहे हैं भगवान देखेंगे, अवश्य देखेंगे। इसके लिए हम इतना कर सकते हैं, अगर हमें दिखता है कि कोई भक्त कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें आचार्य से प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमारी प्रार्थना से आचार्य कुछ कार्य कर सकते हैं उनके लिए, भगवान कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। हमें भगवान पर आश्रित होना चाहिए, बजाय कि हम खुद दूसरे को जज करने का प्रयास करें। क्योंकि वैसे भी हमारी वो क्षमता नहीं है और योग्यता भी नहीं है। तो ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भगवान बता रहे हैं कि पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान सबके पिता है, हम सबके पिता भगवान है कृष्ण। तो कृष्ण जानते हैं कि हम अपने संतान को किस प्रकार भला कर रहे हैं। तो हमें अगर कोई कुछ गलती करता भी है, तो आचार्य बताते हैं कि सरल बालक जैसे बनना चाहिए हमको। इसलिए भक्ति सिद्धांत रूप बात बोलते हैं सरलता ही वैष्णवता। अगर हम भक्ति करने आए, तो सबसे पहली योग्यता जो हमें विकसित करनी है वह सरलता। सरलता का क्या अर्थ है? अंदर बाहर से एक होना चाहिए हमें, हमें कपट का त्याग करना चाहिए। तो अगर हम सरल भाव से भगवान से क्षमा मांगेंगे, गुरुजनों से या उच्च भक्त जो है, हमसे उन्नत भक्त है, उनके उनसे क्षमा मांग लेंगे, अपनी गलती प्रकट कर देंगे, तो वो हमें क्षमा कर देंगे। तो कम से कम हमें इतना करना चाहिए। अगर हम कुछ गलती करते भी हैं, तो उसके लिए हमें क्षमा मांगनी चाहिए भगवान से और भक्तों से। इसीलिए हमारे आचार्य हमें ये सिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कपट में रहेंगे, तो बहुत समय लगेगा ज़्यादा। जैसे एक कहानी आती है, भक्ति सिद्धांत रूपा जी बताते हैं। एक बार एक ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण किसी बड़े कोई जमींदार थे, उन्होंने एक मंदिर बना रखा था अपने घर के बाहर, और उस मंदिर में भगवान की आराधना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए एक ब्राह्मण को रखा था। तो ब्राह्मण वहाँ पूजा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो जमींदार थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी का केला लाके मंदिर में भोग लगाने के लिए रखते हैं, और बोलते हैं कि भोग लगा देना भगवान को। तो ब्राह्मण के मन में थोड़ा लोभ आ जाता है, कलयुग के ब्राह्मण है तो थोड़ा लोभ रह जाता है। तो ब्राह्मण के मन में लोग आता है, अरे वाह इतना बढ़िया केला आया, तो मैं इसको खा लूंगा और हाथ में अपने मित्र को भी खिलाऊंगा। तो अपने दोस्त को बुला लेता है वहां पे, खिलाने के लिए। तो जब वो अंदर में भोग भी लगाने के लिए रखते हैं और साथ में खुद केला खा रहे हैं बढ़िया, तो उतने में वो जो जमींदार होता है वो आके दरवाजा खटखटाता है, बोलता है कि दरवाजा खोलो, भोग लग गया क्या। तो जैसे ही वो देखता है कि वो जमींदार आ गया तो घबरा के बोलता है, मैं केला नहीं खाया, मैंने केला नहीं खाया। अब वो जमींदार तो नहीं देख रहा कि उसने केला खाया नहीं खाया, वो क्या कर रहा है अंदर में, लेकिन वो खुद ही बोलता है मैं केला नहीं खाया, मैं केला नहीं खाया। तो इसका इस कहानी से ये आता है कि अगर हम कोई गलती करते हैं और उसको छुपाने का प्रयास करते हैं तो भी वो छुप नहीं सकेगी, अपने आप प्रकट हो जाएगी। लेकिन सरलता इसी में है कि हम अपनी गलती को स्वीकार करें, ये विनम्रता है। ये विनम्र भाव देख के भगवान हम पर कृपा करेंगे, वैष्णव पर कृपा करेंगे और उनकी कृपा से हम सुधर पाएंगे, अपनी गलती को दूर कर पाएंगे। क्योंकि हम तो छह जो विकार हैं, अनर्थ हैं, इनसे तो हम ग्रस्त हैं ही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भावना तो हमारे अंदर है, ये सब अनर्थ तो हैं। और भगवान कैसे हमारे हृदय में प्रकट होंगे? भगवान को अपने हृदय में अगर हमें बिठाना है उसके लिए उसको शुद्ध करना पड़ेगा ना। चेतो दर्पण मार्जना एक आसन है, वो साफ सुथरा नहीं है, कैसे हम भगवान को वहां विराजमान कर सकते। तो हमारा हृदय ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मदमात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष की भावना, इन सबसे भरा हुआ है, भगवान कैसे विराजमान होंगे। इसीलिए जो देवकी के जो छह पुत्र थे जिनका कंस ने वध किया था, तो वो छह पुत्र जो है वो हमारे छह विकारों के प्रतीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य। तो जब ये छह विकार दूर हो जाएंगे तभी संकर्षण प्रकट होते हैं, तभी बलराम आते हैं, गुरु आते हैं, गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारा हृदय शुद्ध करते हैं। अगर हम गुरु के निर्देश में, आदेश में अगर हम सेवा करके अपने हृदय को शुद्ध करेंगे, अनर्थ निवृत्ति, आदर श्रद्धा, पहले सबसे पहले श्रद्धा आवश्यक है। तो हमें कुछ श्रद्धा है इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं? साधु संग, तो साधु संग, साधु संग करने के लिए। लेकिन साधु संग से क्या करेंगे फिर? साधु के संग में आएंगे तो क्या करेंगे? भजन क्रिया, फिर हम भजन क्रिया प्रारंभ करेंगे। तो अभी हम भजन क्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर हम ठीक भाव से भजन करेंगे तो क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति से, तो अनर्थ निवृत्ति होगी। लेकिन आचार्य बता रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, कभी कभी अनर्थों से मुक्त होने के लिए बहुत जन्म लग जाते हैं, तो इसीलिए हमें गंभीर रहना चाहिए, हमें इतना इसको हल्का नहीं समझ लेना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं तो तिलक माला लगा लिया और मैं जप कर रहा हूँ माला पकड़ के, तो मैं भक्त बन गया। नहीं, हमें ये हम साधन कर रहे हैं, भजन क्रिया प्रारंभ की है और भक्त बनना बहुत ऊंचा लक्ष्य है हमारा। वो सब जो योग्यताएं हैं भक्त की वो हमें अपने अंदर विकसित करनी होगी, तो उसमें समय लग सकता है। तो हमें इसीलिए उत्साह, निश्चय, धैर्य भी रखना चाहिए, लेकिन धैर्य रख के बैठना नहीं है, उत्साह, हर समय में उत्साहित रहना है। किस प्रकार हम भगवान की सेवा करें, वैष्णव को प्रसन्न करने का प्रयास करें जिससे उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। कृपा हमें सस्ते में नहीं मिलेगी, कृपा प्राप्त करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। वो प्रयास जो है वो हमें करना चाहिए आचार्य के निर्देश में, मार्गदर्शन में, तभी हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जब हम भी जब कभी हम एक मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थान गतोपि वा यह स्मरे पुंडरीकाक्षं सभाया घनतर शुचि, यानी चाहे कोई अपवित्र है या पवित्र है, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ अपवित्रता है, रोज रोज कुछ ना कुछ अपवित्रता आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम तीन गुणों का संग कर रहे हैं, इस कारण से कुछ ना कुछ अपवित्रता आ जाती है ना चाहते हुए भी। तो क्या करना है? अपवित्रो पवित्रो वा, चाहे वो अपवित्रता है चाहे पवित्रता है, सर्वस्थान गतो दुआ, चाहे किसी भी स्थिति से हैं हम, यह स्मृत पुंडरीकाक्षं, जो भी भगवान कृष्ण कमल नयन भगवान कृष्ण है उनका जो स्मरण करेगा सब आया भयंकर शुचि, वो बाहर से और अंदर से शुद्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ वृंदावन में आए हैं, वृंदावन में रह रहे हैं, तो हमारे पास अवसर है भगवान का स्मरण करने का, बहुत खुला अवसर है। प्रभुपाद जी बोलते हैं वृंदावन में बहुत सरल है भगवान को स्मरण करना, किसी भी जगह आप जाए, कितने हजारों मंदिर हैं, कहीं भी आप जाएं आप साक्षात दादा श्याम सुंदर को देख सकते हैं, कृष्ण बलराम को देख सकते हैं, हम गोनिदाय को देख सकते हैं, तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन भगवान के विग्रह के सामने होने के बाद भी हमारा मन कहीं और हो सकता है, भगवान के विग्रह के सामने खड़े हैं लेकिन मन में दूसरा चिंतन कर रहे हैं, तो क्या भगवान को दर्शन हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। वास्तव में तो हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। एक भक्त सिद्धांत प्रभुपाद से बोला कि हम जगन्नाथ जी के दर्शन करके आते हैं, तो भक्त सिद्धांत प्रभुपाद बोले कि तुम जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर सकते, जगन्नाथ तुम्हें देखेंगे, भगवान हमको देख रहे हैं। तो हमें हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवे ग्राह्य इंद्रिय, जड़ इंद्रियों से काम क्रोधों पदार्थों से अशुद्ध विकृत है इंद्रिया, इससे हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, भगवान का नाम नहीं कर सकते। सेवा दुखे जीवा, सेवा करने से हम वास्तव में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत भगवान बोलते हैं कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट एक्ट इन सच अ वे दैट कृष्णा विल लाइक टू सी यू। हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, इस प्रकार से इस मनोभाव से सेवा करनी चाहिए कि भगवान स्वयं हमें देखने देखे। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने जयानंद प्रभु। तो जयानंद प्रभु तो कोई बड़े कोई बड़ी पद पर नहीं थे, बड़े विख्यात भक्त नहीं थे, एक सरल भक्त थे, एक छोटे से सेंटर के प्रचार केंद्र के वो अध्यक्ष थे, लेकिन वो इतने विनम्र भाव से और इतनी निष्ठा से वो सेवा करते थे कि स्वयं प्रभुपाद उनको ढूंढते थे, कहाँ है जयानंद, वेयर इज जयानंद, जयानंद कहाँ। तो ये हमारे सामने उदाहरण है। और जब उनको अंत समय में उनको एक एक बीमारी हो गई थी ब्लड कैंसर जैसे, तो उनको पता था कि वो नहीं बचेंगे, लेकिन उनके परिवारजनों ने उनके लिए बहुत सारा धन भेजा, $5,000 उस समय 70s में भेजा उनके परिवार वालों ने कि आप मैं इलाज करवा लूँ, लेकिन उन्होंने वो सारा धन प्रभुपाद जी को दे दिया। प्रभुपाद जी को उन्होंने देते हुए बोला कि आप प्रभुपाद जी मैं तो नहीं बचूंगा, मैं जानता हूँ, और इस अनित्य शरीर से क्या लाभ है, अगर आपकी कुछ सेवा हो सके, भगवान की कुछ चरण वालों की सेवा हो सके तो मुझे उसमें बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद जी नहीं ले रहे थे वो धन, नहीं नहीं आप रखिए आपके इलाज के लिए, तो वो नहीं प्रभुपाद आप इसको लीजिए। और टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य उस समय चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पुस्तक छपने वाली थी, उसके लिए उन्होंने $5,000 उस समय दिए जयनंद प्रभु ने। तो जब जयनंद प्रभु शरीर त्याग किए तो स्वयं प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद जी बोले कि मेरा ये मानना है कि जयनंद जो है वो भगवान के धाम चले गए होंगे, अगर थोड़ी सी भी उनमें कोई कुछ इच्छा रही होगी कुछ भी सुख भोग करने की, तो बहुत बहुत उच्च लोकों में जाएंगे और वहां पर वहां काफी समय तक वो सुख अनुभव करके सुख भोग करके और फिर वहां से भगवान के धाम चले जाएंगे। तो अगर कोई भक्ति करने आए हैं तो हम एकदम से तो शुद्ध भक्ति की इच्छा नहीं रख रहे हैं, कुछ भौतिक इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई भौतिक इच्छा भी है उसके लिए भी अगर कोई कृष्ण की शरण में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। लेकिन धीरे 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 जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो जो भी हमारी भौतिक इच्छाएं हैं उसे हम छोड़ देंगे, भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं भक्त के लिए। भक्त को तो भगवान यही चाहते हैं कि वो केवल भगवान की शरण में आए, भगवान हमें चाहते हैं कि हम भगवान की संगति में आए, उसके लिए भगवान व्यवस्था करते हैं भक्तों के लिए। तो किसी भक्त के लिए क्या व्यवस्था करनी है भगवान देखेंगे, हमें कुछ अपने आप से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत गंभीर है, हमें इस पर विचार करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आचरण में ऐसे लाएं, दूसरों का दोष ना देखें, दूसरों की निंदा ना करें, तो हम बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कहा रहे ना निंदे कृष्ण कृष्ण बोले, अगर कोई कृष्ण हम किसी की निंदा नहीं करेंगे और केवल कृष्ण नाम का कीर्तन करेंगे, कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, तो बहुत जल्दी हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, बहुत आसानी से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सरल उपाय है, भक्ति सरल है अगर हम सरल बन रहे हैं, लेकिन हम खुद जटिल हो जाते हैं इसलिए भक्ति हमारे लिए जटिल हो जाती है। तो हमको सरल बनना है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है हमें करना भक्ति जीवन के लिए, तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। तो मेरी योग्यता नहीं है, मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ, आप सब आशीर्वाद दीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको गंभीरता से अपने आचरण में ला सकूँ और ताकि मैं अपना सुधार कर सकूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराश्रीमद्भागवतम की, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।